ये आकाशवाणी है। अब आप देवेंद्र त्रिपाठी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संविधान हमारे लिए मार्गदर्शक है और ये बड़े गर्व की बात है कि अगले वर्ष 26 जनवरी को संविधान के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष संविधान दिवस के अवसर पर कई गतिविधियां शुरू हुई हैं जो साल भर चलेंगी। उन्होंने कहा कि संविधान की विरासत से नागरिकों को जोड़ने के लिए विशेष वेबसाइट constitution75.com बनाई गई है। प्रधानमंत्री ने मन की बात के श्रोताओं, बच्चों और युवाओं से इस वेबसाइट को देखने का अनुरोध किया। इस वेबसाइट पर लोग संविधान की प्रस्तावना पढ़ सकते हैं और अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं। इस पर अलग अलग भाषाओं में संविधान को पढ़ने का अवसर भी मिलता है और संविधान से जुड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार प्रयागराज में देश और विश्वभर के श्रद्धालु डिजिटल महाकुंभ के भी साक्षी बनेंगे। डिजिटल नेविगेशन की मदद से लोग विभिन्न घाटों, मंदिरों और साधुओं के अखाड़ों तक पहुंच पाएंगे। इसी नेविगेशन व्यवस्था से पार्किंग तक पहुंचने में भी मदद मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि पहली बार कुंभ आयोजन में AI चैट बोट का भी प्रयोग होगा। इसके माध्यम से 11 भारतीय भाषाओं में कुंभ से जुड़ी प्रत्येक जानकारी उपलब्ध हो पाएगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन सुविधाओं का लाभ उठाने और हैशटैग एकता का महाकुंभ के साथ अपनी सेल्फी अपलोड करने को भी कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि फिजी में भारत सरकार के सहयोग से तमिल शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 80 वर्षों में पहली बार प्रशिक्षित तमिल शिक्षक फिजी में तमिल भाषा सिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि 2025 में भारत नई ऊंचाइयों को छुएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अगले महीने होने वाले महाकुंभ के लिए आमंत्रित किया। महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से हो रही है जो 26 फरवरी तक होगा। न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया ने आज शिमला के राजभवन में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाला। उन्हें राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने पद की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तथा अन्य मंत्री इस अवसर पर उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समीक्षा बैठक दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में चल रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज दोपहर बाद इस बैठक के सत्र को संबोधित किया। इस बैठक में संगठन के महासचिव BL संतोष, राष्ट्रीय महासचिव, सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, प्रदेश संगठन के महासचिव और संगठन के चुनाव प्रभारी तथा सह प्रभारी उपस्थित हैं। दक्षिण कोरिया में एक विमान दुर्घटना में आज 177 लोग मारे गए। ये विमान बैंकॉक से दक्षिण कोरिया के मुआन जा रहा था। जेजू एयरलाइंस के विमान में 175 यात्री और चालक दल के 6 सदस्य सवार थे। चालक दल के 2 सदस्य जीवित हैं और 2 लोग लापता हैं। 22 लोगों की शिनाख्त हो चुकी है। पुलिस, सेना और तटरक्षक बलों के 700 से अधिक जवानों को बचाव कार्यों में लगाया गया है। ये विमान रनवे से उतर गया और एक दीवार से टकरा गया तथा आग के गोले में बदल गया। दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति चोई सांग मोक ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया और राहत और बचाव कार्यों के लिए निर्देश दिए। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि यदि मिसाइल हमला किया गया तो अमेरिका और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो को जवाबी सैन्य कार्रवाई का सामना करना होगा। श्री लावरोव ने सरकारी समाचार एजेंसी रिया नोवोस्ती के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि रूस किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि रूस के लिए बाधाएं पैदा करने वालों को तीखे विरोध का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि रूस की रुचि संघर्ष खत्म करने में है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के मुख्य कारणों का समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नाटो का पूर्व और विस्तार यूक्रेन संकट का मुख्य कारण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप जीतने पर कोनेरू हम्पी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने दूसरा वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप खिताब जीतने पर शतरंज की ग्रैंड मास्टर की उल्लेखनीय उपलब्धि की सराहना की। ये उपलब्धि हासिल करने वाली कोनेरू हम्पी पहली भारतीय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम्पी का धैर्य और प्रतिभा लाखों लोगों को प्रेरित करेगी। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में घने कोहरे का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी देर रात और तड़के घने कोहरे की आशंका है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में अगले 3 दिन तक शीतलहर चलने की आशंका है। अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इसी तरह से अगले 3 दिन में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में न्यूनतम तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।